ला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर छ
ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य
ॐ नमः सिद्धेभ्य
ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं
नमो लोये
सौवसाऊनं
प्रणमियनि संक्रमणो पच्चूह समुद्र संकमे दिनचलने बन्धगमहाहियारम् यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयदेवला टीका है जो कषाय पौर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीयुषव आचार्य जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। आठवीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है उसमें हम पृष्ठ संख्या 42 पर आ गए 42। यहाँ संक्रामक की बात चल रही थी। अभी तक हमने स्वामित्व देखा, प्रत्येक प्रकृति का संक्रामक कौन है, तो हमने देखा कि मिथ्यात्व प्रकृति का संक्रामक, संक्रमण करने वाला सम्यक दृष्टि है। सम्यक प्रकृति का संक्रामक है मिथ्या दृष्टि उद्वेलना के समय, और सम्यक मिथ्यात्व की दोनों है। सम्यक के काल में भी उसका संक्रमण होता है और मिथ्यात्व में भी उद्वेलना संक्रमण चलता है। ये तीनों ही दर्शन मुनि की संक्रमण कहाँ नहीं होता है, दूसरे तीसरे में तो होता ही नहीं। तो इस तरह से हमने अन्य जो 25 है उसका संक्रमण मिथ्या दृष्टि को भी है, सम्यक दृष्टि के भी है, ये बात हमने देखी थी। काल का भी कथन चल रहा था, लगातार की काल की बात चल रही थी, उसको हमने ओघ में देखा था। अभी आदेश में बात चलेगी 42 पृष्ठ पर। आदेश से देखते हैं, यहाँ पर आदेश की अपेक्षा नारकियों में मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर। नरक में सम्यक्त्व का जो काल है वो मिथ्यात्व का संक्रमण का काल होगा। सम्यक्त्व कितने काल तक हो सकता है, कम से कम एक अंतर्मूर्त, अधिक से अधिक
कुछ कम
33 सागर। सम्यक्त्व के संक्रामक का जघन्य काल एक समय है। सम्यक्त्व का संक्रामक मिथ्यात्व अवस्था में होता है, तो संक्रामक एक समय कैसे होगा? हाँ बोलो अश्विन।
सम्यक्त्व के संक्रामक मिथ्या दृष्टि,
सम्यक्त्व का संक्रामक कहाँ पर होता है?
उद्वेलना में।
उद्वेलना में होते तो उद्वेलना करते 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 यहाँ
एक समय बाकी था, और
एक समय में उद्वेलना वाले ने अंतिम फाली घिरी, बाद में आवली में प्रवेश किया, तो उसका संक्रमण रुक गया, तो एक समय के लिए संक्रमक था। अन्य गतियों में से नरक गति में आया, क्योंकि अभी आदेश में देख रहे हैं नारकियों में
अंतिम फाली बाकी थी, और यहाँ तो
मान लेते हैं तीरंच में से नरक में आया, तीरंच में उद्वेलना कर रहा था। अब उसके कितना काल, एक फाली गिरने बाकी थी,
एक समय ही बाकी है।
हाँ, तो वो नरक में आने पर पहले ही समय में उसने वो फाली का संक्रमण किया, फिर वो आवली में प्रविष्ट हुआ। उच्चिष्ट आवली होती है ना, जब उद्वेलना पूरी होने पर एक आवली, यानी आवली में एक समय कम, इतने निश्चय बाकी है, क्योंकि उदय तो वहाँ मिथ्यात्व का चल रहा है, तो उसको कहते हैं आवली में जब प्रवेश किया तो समय प्रकृति का वहाँ उद्वेलनता भी नहीं होगी, संक्रमण नहीं होगा। क्यों? सभी जगह मिथ्या दृष्टि है, सम्यक तो प्रकृति की उद्वेलना करने वाला, वो तो सभी जीव समासों में पाया जाएगा, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, नरक तक, सब जगह। सम्यक तो की बात है, यानी सम्यक प्रकृति की बात है। चल रही बात, तो यहाँ देखो सम्यक्त्व के 42 पेज आदेश की अपेक्षा नरक में बात चल रही है। सम्यक्त्व का संक्रामक का जघन्य काल एक समय, क्योंकि अन्यत्र उद्वेलना करते करते वहां आने पर उसका अंतिम संक्रमण हुआ, बाद में अवली में प्रवेश हुआ तो संक्रमण रुक गया, अभी सत्ता में है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि इतने काल में उद्वेलना पूरी होती है। सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के संक्रामक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, क्योंकि सम्यक्त्व भी और मिथ्यात्व भी दोनों ले लेना, या कोई ऐसा भी होगा ना कि अनंतानुबंधी के लिए मिथ्या दृष्टि ही है, समय तो प्राप्त भी नहीं किया है तो भी उसका संक्रमण तो चलता ही रहेगा, और सम्यक मिथ्यात्व के लिए हाँ उसकी 28 की सत्ता होनी चाहिए तो उसका ये संक्रमण चलेगा। सम्यक तो बीच में प्राप्त करेगा तो भी और नहीं तो भी।
हाँ, ये अनंतानुबंधी के बारे में एक समय हम लोग ने कटित करना है,
अनंतानुबंधी का
एक समय,
संक्रामक का एक समय। अभी संक्रामक में वो ऐसा ले सकते हैं ना कि उद्वेलना की
नहीं या विसंयोजना की, अनंतानुबंधी के बारे
उद्वेलना
में।
नहीं मुझे विसंयोजना कहना, विसंयोजना की फिर संयोजना
एक
की,
एक संयोजना प्लस की, एक समय बाकी था,
संयोजना की उसने, संयोजना करने पर आवली काल तक उसका संक्रमण नहीं होगा।
हाँ, पर एक समय नहीं घटित होगा,
आवली के बाद एक समय के लिए संक्रमण किया और फिर मर कर अन्यत्र चला गया।
वही वही अपेक्षा से
हो सकती है, इमीडिएट नहीं मरता परंतु यहाँ आवली में तो मर सकेगा ना। ना 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 ना, लास्ट में उसने
ये सामान्य राखियों में तो शासादर में मरण है, वो अपेक्षा से देखा था ना हमने, शासादन में एक आवली काल तक रहा,
वही शासादन की बात बताई मैंने,
और एक समय में संक्रमण चालू हुआ और एक दूसरे समय में मरण हो गया।
वो वही तो बात बताई अभी मैं। अच्छा, यानी शासादन में गया,
पहले हमने विषय योद्धा की बात की, इसीलिए
विषय योजना करके
संयोजना
की, मैं संयोजना जो शासादन की अपेक्षा बात कर रही वो मैंने बोला नहीं शायद, तो संयोजना हुई है नहीं, वो शासादन में ही चला गया। अभी बात आएगी विशेषार्थ में, देखो अभी तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उत्कृष्ट काल 33 सागर, 12 कषाय और 9 नौ कषाय के संक्रामक का कितना काल है, जघन्य उन्य है कि थ लिखा है, थ लगा है वो लाइन बराबर कर दो, जघन्य दस काल 10,000 वर्ष है, क्योंकि 12 कषाय और 9 नौ कषायों का संक्रमण तो चलेगा ही हमेशा वहां पर, तो कम से कम काल लेनी, कम से कम आयु लेनी और अधिक काल उत्कृष्ट आयु लेनी, उत्कृष्ट काल 33 सागर है। अभी अलग अलग पृथ्वियों की बात करेंगे तो पहली पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक प्रत्येक नरक में मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त तक वो सम्यक दृष्टि रहेगा, वो तो सर्वत्र लागू होता है। उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति क्यों कही,
सम्यक तो नहीं रहेगा,
वहां जाने पर सम्यक तो प्राप्त करेगा ना, तो आप कहेंगे पहले नरक में तो सम्यक के साथ आ सकता है परंतु वहां तो कृतकृत्य होगा या क्षायिक होगा, तो वहां जाने पर जो सम्यक तो प्राप्त करेगा तो उसके लिए कुछ कम कर देना। हाँ? वही तो, इसीलिए कृतकृत्य हो या क्षायिक हो उसकी सत्ता में मिथ्यात्व ही नहीं है। सम्यक्त्व का भंग सामान्य नारकियों के समान है,
क्योंकि ये सातवीं पृथ्वी में एक समय घटित होगा, क्योंकि वहां पे शासादन में मरण नहीं है, मिथ्यात्व में जाके ही मरण होगा,
सातवीं पृथ्वी में वो घटित नहीं होगा,
तो मिथ्यात्व में जाएगा, एक आवली तक संक्रमण नहीं होगा और एक समय तक उतने छोटे काल में मरण हो सकता है।
मरण तो हो सकता है परंतु
मिथ्यात्व
में जाते ही नहीं होगा, क्योंकि आयु बांधेगा।
हाँ, तो वही
नरक में ये घटित नहीं होगा।
हाँ, तो ये एक समय अनंतानुबंधी का
अन्य नरकों में होगा, अन्य एक तो सामान्य कथन है, अभी विशेष कथन तो अब शुरू हुआ है, अब जो बता रहे हैं कि पहले नरक से सातवें नरक तक मिथ्यात्व की बात तो
सामान्य
बता दी उन्होंने सामान्य अपनी अपनी स्थिति में से कुछ कम करना। सम्यक देखो सम्यक्त्व का भंग सामान्य नारकियों के समान है। सम्यक्त्व के लिए क्या कहा था?
एक समय
यानी वो उद्वेलना करते करते आया था और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्या के बाद वो भी सभी नरकों में घटित होता है। अब सम्यक मिथ्यात्व की बात अभी आई, अनंतानुबंधी की अभी नहीं लिए। उसका जघन्य काल एक समय, सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य काल एक समय, वो भी ऐसा ही लेना ना, सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण करते करते यानी उसका उद्वेलना करते करते आया है और यहाँ अंतिम फाली उसकी
एक समय
के लिए संक्रमण हुआ। और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, तो बीच में समय दृष्टि भी हुआ मिथ्या दृष्टि हुआ वो दोनों ही जगह उसको संक्रमण तो चलता रहता है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक का जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिए, किंतु ये किंतु आया, इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वी में जघन्य काल अंतर्मूर्त है। किसका जघन्य काल बताया?
अनंतानुबंधी का संक्रमण का।
हाँ, अनंतानुबंधी का, क्यों? ये तो हमेशा तो उसका संक्रमण करते हैं ना, मिथ्या दृष्टि भी करते हैं सम्यक दृष्टि भी करते हैं। अब जघन्य अंतर्मूर्त कैसे लेना?
विसंयोजना की, वापस संयोजना की,
विसंयोजना की, संयोजना की,
वापस विसंयोजना की,
वापस विसंयोजना करनी है,
हो सकता है ना?
तो वहाँ तो संक्रामक एक अंतर्मूर्त के लिए संक्रामक रहा, तो क्या हुआ? अच्छा, सत्ता ही नष्ट कर दी।
हाँ।
इस तरह से लिया
और ऐसा भी हो सकता है ना, संयोजना करेगा और मरण
होगा, अंत में अंतर्मूर्त के बाद मरण हुआ, वैसा ले सकते हो उसको। देखो संसाधन में उसका मरण नहीं होता सातवें नरक का, तो उसके मिथ्यात्व में ले जाना, और मिथ्यात्व में जाने पर संक्रमण चालू हो गया आवली के बाद
और मरण,
और वहाँ तो अंतर्मूर्त के बाद मरण हुआ, क्योंकि मिथ्यात्व में गया वहाँ पर उसने आयु का बंध किया वो भी अंतर्मूर्त के लिए, फिर कुछ काल बाद यानी अंतर्मूर्त के अंदर ही उसका मरण हुआ।
और दो बार विसर्जन भी ले सकते हैं,
दो बार विसंयोजना का काल बड़ा है कि ये काल बड़ा है ये देखना पड़ेगा, विशेषार्थ में बताएंगे अभी देखेंगे हम, क्योंकि हमें जघन्य काल देखना है ना वहां पर, बाहर नहीं बारह करना उसको। बारह कषाय और नौ नौ कषायों के संक्रामक का जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। विशेषार्थ, यहाँ नरक गति और उसके अवांतर भेदों में, पहले में पहले सामान्य कथन किया, अवांतर भेद ने पहली दूसरी तीसरी चौथी इस तरह से हर एक नरक में अलग अलग बात की। मिथ्यात्वादी प्रकृतियों के संक्रामक का कितना कितना किसका कितना काल है यह बताया है। नरक गति में सम्यक दर्शन का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है। इसी से यह मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर घटित हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक पृथ्वी में जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण घटित कर लेना चाहिए। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि पहली पृथ्वी में तो सम्यक दृष्टि जीव भी मरकर उत्पन्न होता है और वह जीवन भर उसके साथ बना रहता है, अतः वहाँ कुछ कम का नियम कैसे लागू होगा? सो इसका यह समाधान है, यद्यपि पहली पृथ्वी में सम्यक दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न होता है यह बात सही है, पर ऐसा जीव 43 पेज या तो कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि होता है या क्षायिक सम्यक दृष्टि मिला, इसलिए जब ऐसे जीव के वहाँ मिथ्यात्व का सत्व ही नहीं पाया जाता तब उसके मिथ्यात्व के संक्रम की बात ही करना व्यर्थ है। शायिक समय दृष्टि है, सत्ता में से भी दर्शन मुनि नष्ट हो चुका है, तो उसके संक्रमण का सवाल नहीं होता। सम्यक्त्व प्रकृति के संक्रामक का, अभी सम्यक्त्व प्रकृति का संक्रामक कौन है?
उद्वेलना करने वाला,
मिथ्या दृष्टि उद्वेलना वाला, उसका जघन्य काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा से बतलाया है, अर्थात जिसके सम्यक्त्व प्रकृति की उद्वेलना में एक समय बाकी है। ऐसा जीव मरकर यदि नरक में उत्पन्न होता है तो उसके नरक में सम्यक्त्व के संक्रामक का जघन्य काल एक समय पाया जाता है। हाँ, आवली में वो संक्रामक नहीं है, नहीं वो डिटेल उन्होंने नहीं लिखी है यहाँ पर, फिर भी जब आवली में प्रवेश होता है तो उसका संक्रमण रुक जाता है, यानी उस संक्रमण के लिए उद्वेलना जो बात है
यहाँ पे उत्पन्न होने में
उद्वेलना संक्रमण तब तक ही है।
हाँ, एक समय प्लस आवली में उत्पन्न होगा तो एक समय के लिए संक्रमक होगा,
उद्वेलना उसको कहते ही नहीं, बाद में जो होता है वो थ्यूक संक्रमण होता है। उद्वेलना तो वहीं तक होती है जब वो आवली में प्रवेश नहीं हुआ है तब तक, उद्वेलना ने उल्टा संक्रमण, जब वो उदयावली वाले में उसमें उतने काल उसके शेष है तब उसका उद्वेलना वाला संक्रमण रुक जाता है, फिर वो एक एक जो निषेक है वो मिथ्या तो रूप होकर उदय में आएगा, उसको यहाँ संक्रमण में नहीं लिया है। यानी वहां उद्वेलना में एक समय बाकी कहा उन्होंने,
लास्ट वाली गिरदे का समय।
हाँ, लास्ट वाली फाली, तभी तक तो उद्वेलना है, बाद में तो उसको उद्वेलना नहीं कहते, बाद में उसको तो थ्यूक संक्रमण के द्वारा पर रूप से उदय में आता है। तथा नरक में सम्यक्त्व के संक्रामक का उत्कृष्ट काल जो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण बतलाया है सो यह उद्वेलना के उत्कृष्ट काल की अपेक्षा से बतलाया, उद्वेलना का जो जघन्य से उत्कृष्ट काल हो सकता है उसकी बात यहाँ बताई। इसी प्रकार प्रत्येक पृथ्वी में सम्यक्त्व के संक्रामक का जघन्य और उत्कृष्ट काल घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कथन से इसमें कोई विशेषता नहीं है। सामान्य से नरक में या प्रत्येक पृथ्वी में सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य काल एक समय भी सम्यक्त प्रकृति के समान घटित होता है, यानी उद्वेलना में एक समय बाकी है। हाँ, उत्कृष्ट काल में कुछ विशेषता है, बात यह है सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के होता है, और इसलिए नरक में सम्यक मिथ्यात्व के संक्रम का उत्कृष्ट काल 33 सागर बन जाता है। अनंतानुबंधी के संक्रामक का भी उत्कृष्ट काल 33 सागर इसी प्रकार से घटित किया जा सकता है, क्योंकि इसका संक्रम भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के होता रहता है, पर ये परंतु आया ऐसे जीव के सम्यक्त दशा में अनंतानुबंधी की विसर्जना नहीं करानी चाहिए, अथवा केवल मिथ्या दृष्टि गुणस्थान की अपेक्षा से घटित करने में भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि कोई भी नारकी जीवन भर मिथ्यात्व के साथ रह सकता है। ये उत्कृष्ट काल की बताई बात, पर इसके संक्रामक का जघन्य काल एक समय इस प्रकार प्राप्त होता है, अभी जघन्य काल की बात चल रही है, जिसने अनंतानुबंध की विसर्जना की है ऐसा कोई एक सम्यक दृष्टि जीव सासाधन में आ गया और एक आवली के बाद एक समय तक उसने अनंतानुबंधी का संक्रमण किया, फिर दूसरे समय में मरकर वह अन्य गति में उत्पन्न हो गया। इस प्रकार सासाधन में ही मर गया। इस प्रकार इसके नरक में अनंतानुबंधी के संक्रामक का जघन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक पृथ्वी में अनंतानुबंधी का संक्रम की अपेक्षा जघन्य काल एक समय घटित कर लेना चाहिए, किंतु विसंयोजना होने पर विसंयोजना के बाद संयोजना होते ही ये तो सासाधन के लिए कंडीशन है। सासाधन के लिए कंडीशन है कि वहाँ तो उसका बंध भी है, उसी समय उसका उदय भी चल रहा है, और वहाँ आवली के पश्चात उसमें संक्रमण होगा अनंतानुबंध। हाँ, बंधावली के बाद उसका संक्रमण होगा, क्योंकि अनंतानुबंधी अभी जो वहाँ बनी है अभी जो अनंतानुबंधी है वहां पर उदय तो चालू है ना, तो उदय तो कैसे होगा, तो संक्रमण से होगा, क्योंकि जो नया बंदा है तो आवली के पश्चात ही उदय में आएगा। तो एकमात्र सासाधन में ये अपवाद है कि वहां आते ही जीव का परिणाम भी हुआ और अनंतानुबंधी का उदय भी चालू हुआ। ये जो उदय है वो संक्रमण की अपेक्षा है, अन्य जो 12 कषाय 9 कषाय वो अनंतानुबंधी रूप से संक्रमित होते हैं, परंतु वो अभी जो संक्रमण हुआ तो वो वापस उल्टा संक्रमण होने के लिए एक आवली चली जाएगी।
एक आवली के पीछे
चल रहे, इसलिए उसको लिया यहाँ पर। किंतु ये तो एक समय अन्य नरकों में घटित होता है, किंतु सातवें नरक में ऐसे जीव का सासाधन में मरण नहीं होता। ऐसे ने ये इसी स्पेसिफिक विषय योजना वाले की बात नहीं, किसी भी जीव का। तीसरे में तो किसी का मरण ही नहीं होता है, तो रही बात दूसरे और चौथे, उस गुणस्थान में भी सातवें नरक के नारकी का मरण नहीं होता, मात्र पहले गुणस्थान में ही मरण होता है। हाँ, सर्वत्र होता है, छह नरकों में सासाधन में मरकर जीव ऊपर आता है। मरकर नरक में नहीं जाने के लिए सासाधन में कंडीशन है, नरक में सासाधन के साथ मरकर वो यहाँ मध्यलोक में आएगा। तो सासाधन मरने वाला सासाधन में मनुष्य में आएगा कि तिर्यंच में जाएगा?
मनुष्य में आएगा,
तिर्यंच में जाएगा। आप कहते मनुष्य में जाएगा
क्योंकि उसने आयु पहले बांध दी है। सासाधन में वरण एक आवली प्लस एक समय के पहले उसने आयु बांध, आयु का
कभी बंदी औपशमिक के काल में
नहीं हो या
देखो सासाधन में मरकर, अभी तो नारकी की बात छोड़ो, हम मनुष्य की बात करेंगे। मनुष्य सासाधन में मरकर कौन से गति में जा सकता है? चारों गति में जा सकता है।
नहीं, मनुष्य
नरक छोड़कर तीनों गति में जा सकता है। वैसे नारकी सासाधन में मरकर मनुष्य भी हो सकता है, तिरंज भी हो सकता है। यहाँ नारक सातवें नरक में ऐसे जीव का सासाधन में मरण नहीं होता और मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त काल हुए बिना मरण नहीं होता, क्योंकि वहां मिथ्यात्व में अभी मिथ्यात्व में जाएगा, आयु का बंद करेगा। अतः वहां जघन्य काल अंतर्मूर्त बतलाया है, या ऐसे भी हो सकता है ना कि मिथ्यात्व में उसने मिथ्यात्व ही था
और बंधक कर दिया,
आयु का बंधक ऑलरेडी किया था उसने, क्योंकि 6 महीने पहले आयु का बंधक होता है और फिर लास्ट में प्रथम ऑप्शन समय तो वो अंतर्मूर्त पहले उसने प्राप्त किया, फिर वो सासाधन में गया, फिर मिथ्यात्व में जाके मर गया। प्रत्येक नरक में इसका ने अनंतानुबंधी के संक्रम का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। तथा उक्त प्रकृतियों के अतिरिक्त जो शेष 12 कषाय और 9 कषाय बची, सो इनका सद्भाव नरक में सर्वदा है और सर्वदा हर हालत में इनका संक्रम होता रहता है।
ये नपुंसक वेद का भी होता रहेगा
सभी का, अभी कोई उसमें
नहीं, यहाँ पे उदय तो नपुंसक वेद का है।
हाँ, सभी कषाय आपस में संक्रमित होती रहती है। स्लो जाएंगे, समझ में आई कुछ बात? नरक में सातवें नरक में सासाधन में मरण नहीं है, बात ख्याल में आई ना? तो इसलिए जो अनंतानुबंधी का जो विषय नहीं, अनंतानुबंधी का संक्रमण किस जीव के होता है? समय दृष्टि के भी होता है, मिथ्या दृष्टि के भी होता है। सासाधन वाले को होगा कि नहीं होगा? अनंतानुबंधी का संक्रमण सासाधन वाले को होगा कि नहीं होगा? होगा, परंतु एक आवली तक नहीं होगा।
छह आवली के, हाँ,
एक आवली
के पहले मरण होगा तो नहीं होगा उसका संक्रमण, एक आवली में मरण हो जाएगा संशोधन में लास्ट
हमको यहाँ जगन ने एक समय गठित करना है ना, इसलिए अवली के बाद छह अवली तक अगर सासाधन का काल है, अभी मरण के बाद छोड़ दो, जो नारकी सासाधन में आता है कोई भी किसी भी नरक का नारकी, प्रथम ऑप्शन समय प्राप्त किया सासाधन में आया, अवली तक संक्रमण नहीं था अनंतानुबंधी का, बाद में उसका संक्रमण चालू हो गया, भले वो सासाधन में रहे मिथ्यात्व में जाए फिर चौथे में जाए कहीं पर भी जाए, क्योंकि अभी भी चौथे में जाएगा तो अभी वेदक समय दृष्टि रहेगा, वो सर्वदा हर हालत में इनका संक्रमण होता रहता है, ये तो नौ नौकशा बारह कशा है, अतः इनका नरक गति और उसके अवांतर भेदों में, अवांतर भेद कौन से, पहली से चौथी नरक अलग अलग कहेंगे तो जघन्य और उत्कृष्ट जहां जो काल प्राप्त है वहां वह बन जाने से उक्त प्रमाण कहा है, ये तो नरक गति की बात हुई आदेश में। अब तिर्यंच गति की बात करेंगे, तिर्यंचों में मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य काल अंतर्मूल, मिथ्यात्व का संक्रामक कौन है मंजूताई, सम्यक दृष्टि जी, तो अंतर्मूर्त के लिए सम्यक दृष्टि रहा फिर मिथ्यात्व में चला गया, तो हम क्या कहेंगे उसका, मिथ्यात्व का संक्रामक का जघन्य काल एक अंतर्मूल, और उत्कृष्ट काल वो तो बराबर है, केला दिख रहे
नहीं, ला दिख रहा है,
मेरा नंबर भी चेंज हुआ होगा, उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्ले हैं, अब यहाँ कुछ कम क्यों लिया, हाँ प्रतिभा आई, हाँ यहाँ आने के पश्चात सम्यक तो प्राप्त किया, क्यों कोई तीन पल्ले वाला सम्यक दृष्टि जन्म नहीं ले सकता, हाँ वो क्षायिक होना चाहिए या कृतकृत्य होना चाहिए, वो तो संक्रामक नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है, उसके तो सत्ता ही नहीं है, उसकी कहाँ पर क्षायिक समय दृष्टि, वहाँ आने वाला क्षायिक समय दृष्टि होता है, तीर्यंचों में मिथ्यात्व के संक्रामक का जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्ले है, ख्याल में आई बात, क्यों देखो किसकी बात चल रही, मिथ्यात्व का संक्रमण करने वाला कब करेगा, जब तक सम्यक तो चालू रहेगा, तो तिर्यंश की ऐसी कौन सी आयु है बड़ी में बड़ी, तो कर्म भूमि में तो एक पूर्व कोटि है तो वो लेके नहीं चले, बहुभूमि के तीन पल्ले की ले, तो उत्तम बहुभूमि, तो वहां पर सम्यक्त्व के साथ जन्मने वाले जीव कोई होते हैं, वो कौन से होते हैं, क्षायिक समय दृष्टि होते हैं, उनकी तो सत्ता में मिथ्यात्व ही नहीं है, तो वहां मिथ्या दृष्टि जन्मा और यथायोग्य काल में सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो तीन पल्ले में कुछ कम काल है इसलिए कुछ कम कर देना, सम्यक तो प्राप्ति के पहले का काल उसमें से माइनस कर देना तीन पल्ले में, तो कुछ कम तीन पल्ले। अभी सम्यक्त्व के भंग की बात है, ये सम्यक्त्व का संक्रामक कौन है, मिथ्या दृष्टि जी जो उद्वेल ना कर रहा है, तो उसका जघन्य काल जैसे हमने नरक में कितना देखा था, एक समय, क्योंकि वहां तिर्यंच में आने आते आते अभी कोई मनुष्य वहां जन्मा है तिर्यंच में, तो उद्वेलना करते करते आया है वहां,
एक आवली प्लस एक समय के लिए उत्पन्न
हुआ, हाँ, तो उसमें अंतिम उद्वेलना यानी अंतिम संक्रमण के बाद में एक आवली में प्रवेश कर दिया उसने, तो उसका एक समय घटित होगा, तो सम्यक्त्व के संक्रामक का जघन्य और उत्कृष्ट काल का भंग, उत्कृष्ट कितना होगा लक्ष्मी पल्ले का असंख्यात होगा, इतना उसका उद्वेलना के लिए उत्कृष्ट काल जो होगा उसको लेना, तो उसको कहते वो भंग नारकियों के समान है। अब सम्यक मिथ्यात्व का देखना है हमके, तो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक सम्यक दृष्टि भी होता है मिथ्या दृष्टि भी होता है, अब उसका जघन्य हमको लेना है, तो जघन्य कैसे लेना जो सम्यक प्रकृति जैसा उद्वेलना करते करते आया है, अन्य गति से उसमें लाना, उसको अन्य गति से तिरंश गति में लाना। तो अन्य गति से लाया है हमने, तो कौन से इंद्रिय वालों में उत्पन्न कराना उसको, कौन से इंद्रिय वाला होगा ये जीव, एक समय की संक्रामक वाला है वो। हाँ प्रेरणा, कौन से इंद्रिय वाला लेना है?
इंद्रिय वाला
आप कहेंगे? हाँ पंचेंद्रिय होगा, आप ही पंचेंद्रिय कहते हैं। मयंक भाई कोई भी
है,
क्यों उद्वेलना ही कर रहा है ना तिरंश गति में, उद्वेलना करते करते आया है, और उसका तो एक इंद्रिय भी हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, निगोद हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ख्याल में आई बात? कोई भी तिरंश गति में कोई भी जो मिथ्या दृष्टि भी है, क्योंकि उद्वेलना वो पूर्व अन्य गति से करते करते यहाँ पर आया है, किसी भी पर्याय में जन्म ले सकता है। जगन्य के लिए तो यह घटित होगा देखो, और उत्कृष्ट काल पल्य का असंख्यात वा भाग अधिक तीन पल्य है। देखो ये क्यों ऐसा लिया, यहाँ बात किसकी चल रही है हमको?
सम्यक मिथ्यात्व का,
सम्यक मिथ्यात्व तिर्यंच गति में, तो सम्यक्व भी होगा मिथ्यात्व भी होगा ऐसा जीव लेना। तो यहाँ सम्यक्व के साथ जन्मने वाला लेने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि तिर्यंच में से तिर्यंच में जाने वाला जीव यहाँ लेना है, और उसको अधिक से अधिक काल हमको घटित करना है जिसमें सम्यक्व भी हो और मिथ्यात्व भी हो, क्योंकि अकेले मिथ्यात्व का काल घटित करेंगे तो पल्ले के असंख्यात भाग में तो उसकी उद्वेलना पूरी हो जाती, वो नहीं चलेगा। अकेले भोग भूमि वाला अगर हम काल लेते अकेले भोग भूमि का, तो उसमें क्या होगा? तीन पल्ले में कुछ कम करना पड़ेगा हमें, उसमें और बढ़ाना है, और बढ़ाना है तो पूर्व भाव में भी उसको मिथ्यात्व में रखना, कौन सी 28 की सत्ता वाला मिथ्यात्व में रखना है। तो पल्ले के असंख्यात भाग पहले
सम्यक्त्व
प्राप्त, उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया था, फिर मिथ्यात्व में गया था। तो ये मेरे पल्ले के असंख्यात भाग पहले संगी पंचेंद्रिय था, तिर्यंच था, तिर्यंच में भी तिर्यंच में ही घुमाना है उसको, तो सम्यक दृष्टि था, मिथ्यात्व में चला गया, उसने उद्वेलना चालू की। पल्ले के असंख्यात भाग काल तक उद्वेलना करते करते वो पल्ले का असंख्यात भाग पूरा होने को आया ना,
उसके पहले
तब फिर भी संगी पंचेंद्रिय में आया, बीच में किसी भी पर्याय में घुमा, उससे कुछ नहीं हमको लेना देना, तब वो भोग भूमि वाली उसने आयु बांधी, वैसे परिणाम हुए। फिर वहां जाने के पश्चात
सम्यक्त्व प्राप्त,
सम्यक्त्व प्राप्त, यानी वो उद्वेलना वहां चालू थी उसकी, सम्यक्त्व के लिए जितनी कंडीशन थी उसके, जितने काल पहले जाना आवश्यक था,
वेदक सम्यक दृष्टि हुआ,
तो फिर वहां उद्वेलना करते करते अंत में उसने फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो फिर उसके संक्रमण चालू रहा, इसलिए पल्ले के असंख्यात भाग अधिक तीन पल्ले का, पूरे तीन पल्ले। कैसे लिया? पहले पल्ले के असंख्यात भाग पहले उद्वेलना कर रहा था, वहां जाने के पश्चात जितना कुछ सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए कंडीशन थी वो तो गर्भ के काल बाद में जो कुछ है उतना काल, तब तक उसकी उद्वेलना चल ही रही थी,
और वेदक सम्यक्त्व का
यहाँ उद्वेलना का यानी संक्रमण का अंतिम समय हुआ, और दूसरे समय में उसने औक्षमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया। आप वेदक क्यों कह रहे हैं?
नहीं औक्षमिक में तो वहाँ पे अवली काल, अच्छा अच्छा एक सागर प्रमाण स्थिति रहती है तभी तक।
हाँ औक्षमिक वाले एक सागर तो पहले अर्लीस्ट कंडीशन है, हमने तो पहले ऐसा भी देखा था एक भी निषेक बाकी है तब भी औक्षमिक सम्यक्त्व हो सकता है, औक्षमिक की बात है, वेदक के लिए एक सागर तक की
नहीं। एक आवली में तो उसका संक्रमण बंद हो जाएगा, इसीलिए मेरे
संक्रमण बंद होने के पहले यानी यहाँ अंतिम संक्रमण हुआ और नेक्स्ट समय में औक्षमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया, या जो कुछ पहले समय में अगर नहीं होता है संक्रमण तो यहाँ दो समय बाकी रखना,
नेक्स्ट समय में भोग भूमि में संक्रमण वेदक सम्यक्त्व प्राप्त,
इसलिए सम्यक मिथ्यात्व के संक्रमण का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग अधिक तीन पल्ले, यानी पल्ले का असंख्यात भाग वो मिथ्यात्व का काल लिया, और वहां जाने के बाद फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया। यानी तिर्यंच में से तिर्यंच में ले गए हैं, ये बात महत्व की है। अकेले संगी पंचेंद्रियों के भी भव नहीं लेना, क्योंकि वहां पूर्व कोटि पृथक्व प्लस तीन पल्ले हो गए, और पूर्व कोटि पृथक्व कितने बार ले लो वो तो पल्ले का संख्या तो अभाग बहुत बड़ा काल है, तो बीच में अन्य इंद्रियों में भी चला जाएगा। अब तिर्यंचों में ही अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक का जघन्य काल एक समय है, कैसे लेना एक समय, जैसे हमने नरक में देखा था
संयोजना की,
वो शासन में आया है, आवली के बाद एक समय तक उसने संक्रमण किया,
नहीं एक समय प्लस आवली के पहले मर गया और यहाँ पे उत्पन्न हुआ और एक समय, अच्छा नहीं नहीं इससे भी घटित होगा शासन में मरण कर
नरक में, जैसे हमने देखा था लास्ट में उसने संसाधन में आया, अवली काल बीत गया, फिर एक समय वहां संक्रमण किया और फिर मर गया। और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, संक्रामक की बात चल रही है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, वैसे तो इसका काल अनादि अनंत हो सकता है अभव्यों में, है ना, हमने देखा था 25 में वो सब लागू होता है, परंतु यहाँ सादी शांत काल लेना है, जिसको स्टार्टिंग है और जिसको एंड है, तो स्टार्टिंग है उसके संक्रमण की स्टार्टिंग है ने जब पहले विसंयोजना की थी किसी भाव में उसने, फिर संयोजना कर दी, आवली के पश्चात संक्रमण चालू किया, तो चलता रहा कब तक, अर्धपुद्गल परावर्तन तक मिथ्या तो में ही रहा और तिर्यंच में ही रहा, ये तो पॉसिबल है ना, अन्य किसी गति में इतना लंबा काल नहीं रह सकता, तिर्यंचों में मिथ्यात्व अनादि मिथ्या दृष्टि होगा तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन उसका भी हम यहाँ देखेंगे काल, क्योंकि अन्य गति से आया हुआ लेना है, इसलिए असंख्यात पुद्गल परावर्तन होंगे, परंतु इसने एक बार सम्यक तो प्राप्त करके उसने अनंतानुबंधी के संक्रमण की शुरुआत की थी, बाकी जो जीव अनादि से करते आए हैं, शुरुआत किसने की, एक बार जिसने विसंयोजना करके जो संयोजना की है उसने वही उसकी स्टार्टिंग किया, शादी हुआ वो
उपाल,
तो उसके लिए अभी कर्ण कितने रहेगा काल, मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्धपुद्गल परावर्तन है तो उसके पहले पहले वो
उपाल कुछ कम,
यानी वो फिर असंक्रमणीय विसंयोजना कर देगा, उसकी सत्ता में से नाश हो जाएगा। बारह कषाय और तिर्यंच गति में, बारह कषाय असंख्यात पुद्गल परिवर्तन में तो अच्छा गति बदलने के, हाँ यहाँ मैंने जो अर्ध पुद्गल परावर्तन बताया वो तो
सम्यक तो जिसने एक बार प्राप्त किया उसको,
हाँ परंतु यह ना उत्कृष्ट काल असंख्यात
जिससे सभी तो प्राप्ति
नहीं किया, ये तो हाँ जो अनादि वाले अनादि मिथ्या दृष्टि वाले के लिए असंख्यात
जैसे अनादि
गति बदल गई, ये अनादि के लिए और सादी मिथ्या दृष्टि के लिए अर्धपुद्गल यानी उपार्ध जिसको हम कहते हैं। अब बारह कषाय और नौ कषायों के संक्रामक
पे तो
का
हम लोग जो ये नित्य निकोट वाला तो अनादि अनंत होगा
अभी तक, जब तक वो नित्य निगोद में है,
हाँ।
वो भविष्य में बाहर आ सकता है,
हाँ।
इसलिए वहाँ अभव्यों की अपेक्षा बताते हैं, हाँ। अभव्यों में तो अनादि अनंत है, फिर भी अभव्यों में भी अगर घटित करना है, अभव्यों में भी घटित करना है तो आप जैसे कहते हैं नित्य निगोद जब तक वो चलता रहेगा तब तक उसको काल देंगे, हाँ। क्योंकि बाद में एक बार वो व्यवहार राशि में आ गया, नित्य निगोद में से निकल कर आया, चारों गति में घूमेगा, अब उसका तिर्यंच गति में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, आपने बताया ना गति बदलती, क्योंकि उसकी शादी कब कहेंगे, जो अन्य गति से तिर्यंच में आया तब शादी कहेंगे, ख्याल में आई बात, हमने उसको काल जब गिनते हैं तो उसको स्टार्टिंग कब कहेंगे, जब अन्य गति से तिर्यंच में आया है तब उसको कहेंगे शादी है, पहले हमारी एक चर्चा चली थी ना, कोई ऐसा जीव है निगोह से निकला है, तिर्यंच गति में ही रहा है, अन्य गति को प्राप्त ही नहीं हुआ, कि उसके लिए भी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन की कंडीशन। एकेंद्रिय का काल है ये।
ऐसा हो सकता है जो द्वितीय निगोह से निकला है वो हमेशा तिर्यंच गति में रहेगा, ऐसा नहीं हो सकेगा ना। जो अभव्य जीव है एक बार वो एकेंद्रिय से निकल गया, नित्य निगोह से निकल गया, तो खाली तिर्यंच गति में ही भ्रमण करेगा, ऐसा हो सकता है?
वही तो हमारी चर्चा चली थी एक बार।
इसके लिए अभव्य क्यों चाहिए? ये भी हो सकता है, जुरान दुर्भव्य होगा।
तो एक तरस का भव क्या नहीं उसका अर्थ, अच्छा एकेंद्रिय में नहीं हो, मगर फिर भी वो तिर्यंच गति का उन्होंने उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन किया। इससे क्या सिद्ध होता है? यानी अन्य गति में
जाएगा, एक बार जाएगा तो वो अन्य गति में जाएगा पक्का।
क्योंकि स्टार्टिंग है ना इसके लिए, शादी है इसलिए अन्य गति से आया हुआ है। अन्य गति से आया हुआ है तो उसके तो एंड भी होगी उसकी।
नहीं नहीं, हमने ऐसे भी एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन देखा है, तो जो एक बार नित्य निगोह से बाहर निकलेगा तो दूसरी गति को प्राप्त होगा,
त्रस में जाएगा असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बाद, फिर भी तिर्यंच गति का भी उत्कृष्ट काल यही
यही बताया, इसीलिए जाएगा वो।
चलो अभी अन्य जो है ना, बारह कषा और नौ नौ कषा, वो तो सम्य दृष्टि हो मिथ्या दृष्टि हो, उसमें तो कोई विसंजना आदि वगैरह कोई बात ही नहीं है, तो उनका तो संक्रमण चलता ही रहेगा। तो तिर्यंच गति में जगन्य कैसा लेंगे? तो तिर्यंच गति का जगन्य काल तो क्षुद्र भव घटित होगा वहां
पर,
तो जगन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, और उत्कृष्ट काल अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है विशेषार्थ। तिर्यंचों में वेदक सम्यक्त्व का जगन्य काल अंतर्मूल और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है, इसी से यहाँ मिथ्यात्व के संक्रामक का जगन्य काल अंतर्मूल और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य बतलाया है। सम्यक्त्व के संक्रामक का जगन्य काल हम पहले देख चुके हैं ना, अभी अभी इसको एक समय हमने देखा था, उद्वेलना करते करते आया है तिर्यंच गति में, और उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण तथा ये उत्कृष्ट उद्वेलना काल लिया। सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के संक्रामक का जघन्य काल एक समय जिस प्रकार नरक में घटित करके बतलाए है, कैसे? सासादन में आने पर, सासादन में आवली प्लस एक समय रहकर, एक समय के लिए उसने संक्रमण किया फिर मर गया, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई अंतर नहीं है। जब यह जीव तिर्यंच पर्याय में रह कर पल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करता रहता है, और उद्वेलना के समाप्त होने के पूर्व ही मरकर तीन पल्ले की आयु वाले तिर्यंचों में उत्पन्न हो जाता है, वहां यानी फिर वहां सम्यक्त्व योग के योग्य काल के प्राप्त होने पर, यानी वहां गर्भ का काल बाद में जो कुछ यथायोग्य काल बीत जाने पर सम्यक्त्व को प्राप्त करके सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता को फिर से बढ़ा लेता है। उद्वेलना करते करते सत्ता घटी थी, अब यह सम्यक्त्व के योग्य काल में फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया, और वहां या तो समय दृष्टि बना रहता है या मिथ्यात्व में जाकर उद्वेलना होने के पूर्व ही पुनः समय दृष्टि हो जाता है। यानी तीन पल्ले तक समय दृष्टि बना रहने की आवश्यकता नहीं है उसके, बीच में मिथ्यात्व भी होगा फिर समय दृष्टि भी होगा। और वहां हाँ, उसके तिर्यंच पर्याय के रहते हुए पल्ले के असंख्यात वे भाग अधिक तीन पल्य काल तक सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम देखा जाता है।
सो यहाँ पे ये सम्यक तो असंख्यात बार ग्रहण करेगा,
हो सकता है उसका, क्योंकि वो बारंबार हो सकता है ना उसमें, करेगा ही, ऐसी बात नहीं है। बीच में मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि कुछ भी हो उसमें कोई हर्जा नहीं। देखो तिर्यंच गति में सदा रहने का उत्कृष्ट काल ये बता दिए, अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। इसी से यह अनंतानुबंधी चतुष्क तथा शेष शो करना और बा करना, और शेष 12 कषाय और 9 कषायों के संक्रामक का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है, तथा तिर्यंच पर्याय में रहने का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। इसी से यहाँ 12 कषाय और 9 कषायों के संक्रामक का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण कहा है। अब तिर्यंचों में अभी सामान्य से बात हुई, अब तिर्यंचों में जो उसके कोई विशेष अवांतर भेद उसकी चर्चा चलेगी। हमने कल ही देखे थे तिर्यंचों के भेद, याद है?
5
एक तो सामान्य तिर्यंच हो गया, फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त तिर्यंचनी और लब्ध्य पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्ध्य पर्याप्त, ऐसा उसका भेद। तो भी पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में त्रिक लिया है, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, उनमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के संक्रामक का जघन्य और उत्कृष्ट काल सामान्य तिर्यंचों के समान है, क्योंकि यही जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं, और इसी की अपेक्षा महाकाल बताया था। मिथ्यात्व का जघन्य कितना देखा था? मिथ्यात्व का संक्रमण जघन्य काल एक अंतर्मुख, सम्यक्त्व में रहने का काल और उत्कृष्ट काल कुछ कम 3 पल ले,
कुछ कम 3
है। मिथ्यात्व का संक्रमण का तिर्यंच, सम्यक्त्व का हमने देखा था जघन्य एक समय, और उत्कृष्ट पल्ले का असंख्यात्व का
नहीं, उत्कृष्ट हमने पल्ले का संख्या तो आप प्लस 3 पल्ले देखे ना,
वो सम्यक मिथ्यात्व का, यहाँ सम्यक प्रकृति की बात है। सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य है वो उद्वेलना की अपेक्षा, उद्वेलना करते करते आया, और अनंतानुबंधी के जघन्य तो हमने देखा था कि अंत में वो सासाधन में आया, आवली प्लस एक समय तक रहा, और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्ले हैं। पहले जो पढ़ा था उसमें इसमें क्या अंतर है? हाँ मंजू बेन, पहले क्या लिखा था? कुछ नहीं लिखा था, देखो निकाल के देखो, सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल कितना लिखा था पहले, मिला प्रेरणा दे? असंख्यात नहीं, सम्यक मिथ्यात्व असंख्यात कैसे होगा?
पल्ले के असंख्यात भाग अधिक 3 पल्ले,
पल्ले का असंख्यात भाग प्लस 3 पल्ले। हमने ये भी देखा था कि पहले संगी पंचेंद्रिय था, तब सम्यक तो प्राप्त किया था, फिर मिथ्यात्व में गया, फिर कितने अन्य अन्य पर्यायों में धारण किए उसने तिर्यंचों में, फिर लास्ट में संगी पंचेंद्रिय में आया, वहां भी उद्वेलना चल रही थी, फिर भोगभूमि में गया, और फिर वहां सम्यक्त्व तो प्राप्त किया। अब यहाँ अपनी कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया अपना पंचेंद्रिय तिर्यंच होने चाहिए,
so 95
तो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? जब सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंच लेंगे तो उसमें काल कितना है? हाँ, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में रहने का उत्कृष्ट काल लास्ट में 3 पल्ले लेना है हमको। पृथक्व कोटि पूर्व में कितनी पूर्व कोटियां लेनी है?
90
हाँ बराबर है ना, सामान्य
संगी दे
संगी असंगी दोनों लेना है।
95 पूर्व कोटि
प्लस तीन पल्ली पूर्व कोटि, 95 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ली। ख्याल में कैसे, क्योंकि संगी में भी तीन वेद है, असंगी में भी तीन वेद है, और बीच बीच में एक अपर्याप्त का विभव करना। पूर्व कोटि की बात। हाँ ये पूछा था ना, ये मनुष्य में लगातार रहने का काल कितना है?
48 कोटि।
मनुष्य में कितना है?
47 कोटि पूर्व तक
प्लस 47 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ली, बात है ना। तो हम अभी तक क्या सुनते आए थे पहले जमाने से, 48 वो होते हैं, वो भी त्रस पर्याय में, और उसमें भी 24 पर्याप्त के 24 अपर्याप्त के। अभी तो ऐसा सुना हमने कि वो तो स्त्री के 16 होते हैं, पुरुष के 16 होते हैं, नपुंसक के 16 होते हैं, और उनमें ही अपर्याप्त 8-8 होते हैं। पता नहीं ना, करना नहीं का अभ्यास नहीं होता, तो हम जो सुनते हैं उसको बताते रहते हैं, फिर बताने में और कुछ अन्य अन्य बातें होती है।
नपुंसक
हो ही नहीं सकता, वो तो लब्धि अपर्याप्त वाला नपुंसक ही होता है। स्त्री वेद वाले को अपर्याप्त ऐसा नहीं है। तो जो 8-8-8 घटित करते थे पहले, यानी ये भी जो हम 47 पूर्व कोटि और तीन पल्ले बता रहे हैं, वो लगातार की बात है। त्रस में इतने ही प्राप्त होते ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। त्रस की स्थिति उत्कृष्ट कितनी देखी, साधिक
2000 सागर,
उसमें लगातार भवों की बात है। बीच में फिर दोबारा भी प्राप्त हो सकते ना, इतने होने के बाद वो अन्य गति में चला गया, फिर वहां से फिर लौट के आ सकता है मनुष्य। ऐसा कहीं नहीं। हाँ, वो मनुष्य बहुत दुर्लभ है, वो बात सही है, फिर भी ऐसा है ना, जब हमको सही पता चला है तो उसका कथन करना अच्छा है, क्योंकि एक लोगों को इसकी दुर्लभता बताना बात अलग है, और जब सही पता चला इसमें भी हम दुर्लभता बता सकते हैं कि वहाँ तिरेंचों में लगातार रहने का काल देखो असंख्यात पुद्गल परार, और मनुष्यों में लगातार रहने का काल कुछ पूर्व कोटि प्लस, वो भी किसी को मिले तो मिले। नहीं, अभी देवलाली में भी चर्चा हुई थी ना, नहीं उत्तम चंद जी ने फिर उन्होंने बताया, पूछा कि धवला का मैनुअल है, धवला पुस्तक में है, तो उन्होंने कहा कि हमको वो लिख के भेजना रेफरेंस, हम पढ़ेंगे फिर हम वैसा ही कथन करेंगे। बहुत अच्छी बात, नहीं क्योंकि वही सुन के रखा है ना,
उन लोग को समझ में आया 48 कोटि पूर्व
बताया, फिर उन्होंने मैं स्वयं पढ़ूंगा पुस्तक में से, ऐसा भी कहा।
देखो डॉक्टर उत्तम चंद जी तो बहुत वैसे सरल आदमी है, उन्होंने कहा कि हमको याद नहीं रहता है, आप शास्त्र में से रेफरेंस हमको दे दो।
मेरे पास धवला है, मैं देखूंगा, आप पुस्तक नंबर पेज नंबर, कल मैंने उसका सब सूत्र नंबर सभी लिख के भेजे।
लेकिन वो सेफ गेम खेलते हैं कि आप भी सच बोलते हो कि नहीं, ये भी ऐसा पूछ नहीं सकते, और हमें याद नहीं रहता है, आप रेफरेंस देना हमें। तो बिल्कुल धवला का हमने रेफरेंस भेज दिया,
4 नंबर की पुस्तक में है ये बातें, मुझे लगता था 5 में, मगर 5 में अंतर है और इसमें काल है। लोग पूछे ना कहाँ लिखा है, मैंने बोले पन्ने पर ये काल की बात तो हर प्ररूपणा में जहाँ जहाँ काल आता है।
उनका तरीका बहुत अच्छा रहा, दोनों तरफ से कंफर्म होता है ना, उनको ये भी कहा कि जब हमारे पास लिखित रूप से है तो हम बोलने में भी हमको बराबर आता है, आपको तो याद हो गया ठीक है, लेकिन ये बात बहुत, वो क्या कहे क्या करें, हमने जो सुन के रखा है वही हम बोलते हैं, हम उसका अभ्यास नहीं है, लेकिन उनको जानने की समझने की इच्छा भी है और प्रयत्न भी है, अन्य लोगों जैसा नहीं। जाने
अभी हम थे साथ में, शैलेश जी पंडित भी आए थे, उत्तम चंद जी भी थे, रात को 11:30-12 बजे तक हमारी चर्चा यही चलती थी, उनके बहुत प्रश्न होते थे करणानियों के बारे में, और हमारे रूम तीनों की साथ साथ थे, चर्चा अच्छी चली।
शैलेश जी भी बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, काफी प्रश्न है उनके,
अभी भी बोल रहे थे मुझे और भी प्रश्न है। हाँ, किसी का नहीं हुआ है ना अभी। और हमारा भी कैसे, हम द्रव्यानियोग को लेके साथ में उसकी स्टडी कर रहे हैं। चलो। मैंने बहुत सारी भ्रमणाएं अपनी निकल जाती है, कितना स्पष्ट हो जाता है पूरा। देखो हम पंचेंद्रिय त्रिक की बात देख रहे थे, तो हमने ये पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्ले देखा, 12 कषाय और 9 कषाय के संक्रामक का जघन्य काल, सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंश में क्षुद्र भव प्रमाण और शेष दो में अंतर्मूर्त प्रमाण है। पंचेंद्रिय तिर्यंश को भी सामान्य का एक है सामान्य तिर्यंश और एक है पंचेंद्रिय तिर्यंश सामान्य, यानी पंचेंद्रिय तिर्यंशों में ये संगी है कि असंगी है, पर्याप्त है कि अपर्याप्त है, ऐसा भेद किए बिना उसको सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंश कहेंगे।
वहाँ पे क्षुद्रभव
तो वहाँ तो हमने अपर्याप्तों को भी ले लिया तो क्षुद्रभव घटित होगा, पर जहाँ हमने पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त कह दिया तो उनकी जघन्य आयु अंतर्मूर्त की है तो वो अंतर्मूर्त होगा। बात ख्याल पर्याप्तों और योनिमति में भी वो भी पर्याप्त जीव है तो उनमें भी अंतर्मूर्त की जघन्य आयु। और उत्कृष्ट काल तीनों में पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले लगातार उसमें रहने का काल, क्योंकि समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि इसमें कोई अपने को दोनों की उसकी संक्रमण चल रहा है इसलिए पूर्व कोटि पृथक, परंतु यहाँ पूर्व कोटि पृथक्त्व का प्रमाण हर एक में अलग अलग होगा। सामान्य तिर्यंशों में अभी हमने 95 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ले देखा, पंचेंद्रिय पर्याप्त में
47
47 लेना, क्योंकि उसमें पर्याप्त जीव लेने बीच में अपर्याप्त लेके फिर हम दोबारा लेते थे वैसी बात नहीं है।
तो योनिमति में 15 प्लस तीन पल्ले
और योनिमति में
15 प्लस तीन पल्ले,
15 कैसे लेना,
योनिमति
संगी असंगी, संगी असंगी के विशेषार्थ। पंचेंद्रिय तिर्यंश त्रिक का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले है, इसलिए यहाँ सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क 12 कषाय और 9 कषाय के संक्रामक का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण बतलाया है। तथा ये बात ख्याल में आई, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व हो अनंतानुबंधी हो या अन्य कषाय उनका संक्रमण मिथ्या दृष्टि में भी होता है सम्यक दृष्टि में भी होता है, तो इसलिए सबके लिए उत्कृष्ट काल की यही कंडीशन है। जघन्य में जो डिफरेंस किया था हमने, तथा सामान्य तिर्यंश का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, सामान्य तिर्यंश नहीं कहना, सामान्य तिर्यंश पंचेंद्रिय कहना पड़ेगा, ऊपर सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंश कहा था यहां भी सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंश कहो, सामान्य के बाद पंचेंद्रिय शब्द डालना, क्योंकि अकेले सामान्य तिर्यंश कहेंगे तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन हो जाएगी बीच में
तीसरी लाइन में,
तीसरी लाइन विशेषार्थ की तीसरी लाइन, सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंश का जघन्य काल, सामान्य तिर्यंशों का भी घटित होता है परंतु हम यहाँ पंचेंद्रियों की बात चल रही है, क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है और शेष दो प्रकार के तिर्यंश, शेष दो है वो पंचेंद्रियों की बात चल रही थी ना इसलिए शेष दो कहा, तिर्यंशों का जघन्य काल अंतर्मूर्त है क्योंकि शेष दो तो हाँ तिर्यंश पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त और योनिमति, इसमें भी संगी असंगी दोनों आते हैं इसलिए उनको ले लेना। इसी से यानी जो पर्याप्त तिर्यंश होते हैं उनकी जघन्य में जघन्य आयु अंतर्मूर्त की है, इसी से यहाँ 12 कषाय और 9 कषायों के संक्रामक का जघन्य काल उक्त प्रमाण बतलाया है। वो प्रयक अपना है।
भूमि में असंगी नहीं होते,
भूभूमि में असंगी नहीं होते,
नहीं होते,
संगी अपना लगता है। शेष कालों के कारणों का निर्देश पहले कर ही आए इसलिए यहाँ नहीं कहा, यानी जो जघन्य एक समय वगैरह जो घटित होता है उसके कारण तो पहले बता चुके हैं। अब पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त, क्योंकि गति मार्गणा का तीर्यंच गति का ये भेद है, वहाँ एकेंद्रिय द्विंद्रिय ऐसे भेद उस मार्गणा में नहीं किए जाते, सामान्य तीर्यंच में सब आ गए थे, है ना, इसलिए यहाँ पंचेंद्रिय तीर्यंच लब्धि अपर्याप्त को लिया। यानी अन्य लब्धि अपर्याप्तकों में भी यही बात होगी, परंतु तीर्यंच गति के अवांतर भेदों में उसको इंक्लूड नहीं किया है, वो सामान्य तीर्यंच में सब कुछ आ गए और अन्य से वो एकेंद्रिय यानी इंद्रिय मार्गणा में आएंगे, काय मार्गणा में आएंगे, यहाँ गति मार्गणा के अवांतर भेदों की चर्चा चल रही है। तो पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में, मनुष्य गति की बात करेंगे तो मनुष्य अपर्याप्त ये भी आलाप है, एक आलाप है ना, उसका भेद है, उसमें सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य काल एक समय, क्योंकि अन्यत्र उद्वेलना करते करते इसमें आए हैं, एक समय में उद्वेलना पूरी हो गई, वो आवली में प्रवेश कर चुका, संक्रमण बंद हुआ। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त भी कौन सा, उद्वेलना वाला ही लेना है यहाँ पर,
नहीं निरंतर अंतर्मूर्त जो जितने अपर्याप्त भोगोगे,
ये मिथ्या दृष्टि ही जीव,
हाँ।
अंतर्मूर्त यानी निरंतर भोग लेना,
ठीक, हाँ। जितने अपर्याप्त भोग,
हाँ, लगातार भोग, लगातार कितने हो गए,
ये पंचेंद्रिय तीर्यंच में तो 16 हो गए ना,
हाँ, अपर्याप्त के 8 और पर्याप्त के, सॉरी, असंगी के 8 और
संगी के 8 और मनुष्य में 8 हो गए,
मनुष्य में 8 हो गए। उसका उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त तथा 16 कषाय अनंतानुबंधी को भी इसी में लिया, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि जीव है तो इसमें कोई विषय बिना संयोजना का सवाल नहीं है। 16 कषाय और 9 कषायों के संक्रामक का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, अपर्याप्तों की बात चल रही है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण है, ये भी लगातार भवों की अपेक्षा बात है। विशेषा, उक्त दोनों मार्गणाओं में, कौन से दोनों मार्गणा,
मनुष्य अपर्याप्त,
पंचेंद्रिय तीर्यंच लब्धि अपर्याप्त और मनुष्य लब्धि अपर्याप्त, सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व का संक्रम न होने से उसका काल नहीं बताया है, क्योंकि यह मिथ्या दृष्टि ही है, मिथ्यात्व का संक्रमण इसमें नहीं होता। एक जीव की अपेक्षा इन दोनों मार्गणाओं का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट सौर हुआ, उत्कृष्ट काल सौर के और करना अंतर्मूर्त है, लगातार हमने देखा था ना, लगातार लब्धि अपर्याप्त बनता रहे पंचेंद्रिय तीर्यंचों में, संगी में 8 भव हो सकते लगातार, असंगी के 8 भव लगातार होते एक अंतर्मूर्त, मनुष्यों के भी लब्धि अपर्याप्त के 8 होते हैं, तो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, इसलिए यहाँ सब प्रकृतियों के संक्रामक का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण बतलाया है, किंतु सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रमण के जघन्य काल में कुछ विशेषता है। बात यह कि जिसके सम्यक या सम्यक मिथ्यात्व के संक्रम में एक समय शेष रहा, संक्रमण की बात करी, एक समय शेष रहा, ऐसा जीव मरकर यदि इन मार्गणाओं में उत्पन्न हो तो उसके इन मार्गणाओं के रहते हुए गुप्त प्रकृतियों के संक्रम का जघन्य काल एक समय भी पाया जाता है। इसी से यहाँ पर इन दोनों प्रकृतियों के संक्रम का जघन्य काल एक समय बतलाया है। तो अभी हमने जो देखा मनुष्य अपर्याप्त या वो तीर्यंच पंचेंद्रिय, कितनी प्रकृतियों का संक्रमण होता है उनके लिए, संक्रमण होने वाली प्रकृतियां कितनी है टोटल,
27 का 27 का होगा, मिथ्यात्व को
मिथ्यात्व को छोड़कर बाकी सभी की पॉसिबल है। अभी सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के लिए सारी मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, 28 की सत्ता वाला, 27 की सत्ता वाला ऐसा ले सकते हो उसमें। आगे अभी देखेंगे मनुष्यत्रिक में, मनुष्यत्रिक कौन कौन से?
सामान्य मनुष्य,
सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य नहीं, मनुष्यत्रिक में सब प्रकृतियों के संक्रामक के जघन्य और उत्कृष्ट काल का कथन पंचेंद्रिय तिर्यंच के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि 12 कषाय और 9-9 कषायों के संक्रामक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। एक समय कैसा होगा? हाँ, नीचे लिखा है। अच्छा, हमने नहीं पढ़ा तो बताओ, पढ़ लिया तो
सब सब से।
हाँ,
एक समय
पहले,
एक समय संक्रमण,
एक समय संक्रमण करके मर गए। देखो विशेषार्थ देखें, जो उपशामक जीव उपशम श्रेणी से उतरते समय एक समय तक 12 कषाय और 9-9 कषायों का संक्रम करता है और दूसरे समय में मरकर देह होता है, उसके इनके संक्रम का जघन्य काल एक समय पाया जाता है। यह मनुष्यों में ही संभव है, इसी से यहाँ मनुष्यत्रिक में उक्त प्रकृतियों के प्रकृति ने प्रकृतियों के संक्रामक का जघन्य काल एक समय बतलाया है। शेष कथन सुगम है।
या अनंत रूपी बुद्धि का भी एक समय होगा ना?
वो तो हर जगह जैसे हमने देखा था ना, साधन में आया है आउदी और एक समय यहाँ बिताया, वो यहाँ पर भी वर्णित होगा। यहाँ बात 12 कषाय और 9-9 कषाय वो तो हमेशा ही होते, समय दृष्टि के भी और मिथ्या दृष्टि के भी, परंतु मनुष्यों में उत्सम श्रेणी में उसका संक्रमण बंद हुआ था, बाद में चालू हुआ
और मरण हो गया,
और फिर मरण हुआ तो मनुष्य गति की अपेक्षा उसका एक समय, गति अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो उसका चल ही रहेगा बाद में भी। अभी देवों में देव गति में देखेंगे, मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त के लिए सम्यक तो प्राप्त किया, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक का जघन्य काल एक समय है। उद्वेलना करते आया हुआ है सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी में जैसे हमने देखा था सासाधन में आया आवली प्लस एक समय बिताया, एक समय के लिए संक्रमण करके मर गया, गति चेंज हो गई, तथा इन सब प्रकृतियों के संक्रामक का उत्कृष्ट काल 33 सागर है। नरक में कुछ कम 33 कहना पड़ा क्योंकि वो तो सम्यक प्रकृति जो सॉरी मिथ्यात्व का जो संक्रमण है वो तो सम्यक दृष्टि के होता है और सातवें नरक में कुछ काल कम करना पड़ा। अब यहाँ तो सम्यक के साथ ही 33 सागर रहने वाले देव हैं, तो पूरा 33 सागर ले
सम्यक तो कब लिया
सम्यक तो का कैसे लेंगे इसमें?
नहीं होगा ना 33 सागर,
मिथ्या तो की बात कर रही मैं।
अच्छा,
मिथ्या तो प्रकृति की संक्रमण की बात है, सम्यक प्रकृति का कहीं भी किसी भी गति में 33 सागर कैसे होगा? पहले के असंख्यात भाग में उद्वेलना पूरी होती है और सम्यक मिथ्यात्व है वो तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों की, उसकी बात नहीं है। पहले हमने मिथ्यात्व की बात देखी, अब सम्यक मिथ्यात्व भले मिथ्या दृष्टि हो सम्यक दृष्टि हो उसका संक्रमण चलता है, तो 33 सागर के जो वेदक सम्यक दृष्टि है उनको तो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण चलता रहेगा
33 सागर तक।
33 सागर तक अनंतानुबंधी का भी चलेगा कि नहीं चलेगा?
हाँ चलेगा,
उसकी विसर्जना नहीं करानी तो चलेगा। सम्यक्त्व का भंग नारकियों के समान है, नारकियों के समान है, सम्यक्त्व का उद्वेलना करते करते कोई आया है एक समय में और उत्कृष्ट काल कितना है तो पल्ले का संख्या था, यानी मिथ्यात्व में रहने का उसके उद्वेलना का उत्कृष्ट काल लेना। 12 कषाय और 9 कषायों का भंग भी नारकियों के समान ही है, यानी वो उत्कृष्ट उसका 33 सागर है और जघन्य अपनी अपनी जघन्य आयु वहां की। भवनवासियों से लेकर उपरिम ग्रेविक तक के देवों में मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य काल अंतर्मूर्त तथा सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक का जघन्य काल एक समय। ग्रेविक तक इसलिए लिया कि वहां मिथ्या दृष्टि भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए वहां पर उद्वेलना करने वाला भी जीव ले लिया वहां। अनंतानुबंधी में वही सासाधन में आके आवली और एक समय में मरने वाला जीव लिया तथा इन सबके संक्रामक का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, क्योंकि हर एक स्वर्ग की अपनी स्थिति अलग अलग है, तो अपनी उत्कृष्ट स्थिति। सम्यक का भंग नारकियों के समान है, यानी उद्वेलना करने वाला जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्ले का असंख्या द्वारा
अपेक्षा से नहीं
तो कुत्ते क्यों लेना ही
नहीं।
सम्यक प्रकृति की बात चल रही है तथा 12 कषाय और 9 कषायों के संक्रामक का जघन्य और उत्कृष्ट काल क्रम से जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, इनका संक्रमण तो चलेगा ही। तो जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं उस स्वर्ग की जघन्य आयु है, जघन्य स्थिति
और
उसका जघन्य काल, और वहां की उत्कृष्ट स्थिति उसका उत्कृष्ट काल। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, 12 कषाय और 9 कषायों के संक्रामक का जघन्य और उत्कृष्ट काल क्रम से जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। वह तो सारे सम्यक दृष्टि ही है, तो इनका संक्रमण चलेगा, तो वहां की जघन्य और उत्कृष्ट आयु लेने तथा अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक का जघन्य काल अंतर्मूर्त। अब ये देवों में अंतर्मूर्त कैसा होगा? ऊपर के देवों में अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक अनंतानुबंधी का संक्रमण अंतर्मूर्त ही होता है, वो कैसे घटित होगा आप कहेंगे? हाँ हाँ बोलो। देवों में इच्छाई होगा, हम अनंतानुबंधी की बात कर रहे हैं। कृतकृत्य वेदक में अनंतानुबंधी है कहाँ? हाँ ये संयोजना कैसे करेगी वहाँ? वो देव है ना वहाँ पर, ये सारे सम्यक दृष्टि है। देखो विसंयोजना करेंगे तो उसकी सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। तो देव में गया और अंतर्मूर्त में विसंयोजना की, तो अंतर्मूर्त से संक्रमक था। नहीं समझ में? देखो देव में गया वो, कौन से जीव है? सम्यक दृष्टि है सारे, या द्वितीय उपशम वाले? क्षाई की तो बात ही नहीं करनी है,
द्वितीय उपशम वाले नहीं लेना है, क्योंकि उसके अनंतानुबंधी की सत्ता ही नहीं होगी।
हाँ उसके नहीं लेना, तो द्वितीय उपशम वाले वो वेदक होते उसके भी नहीं लेने, तो वेदक सम्यक दृष्टि लेना है यहाँ पर। तो वहां जाने पर एक अंतर्मूर्त में अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, जब तक विसंयोजना नहीं की है
तभी तक
तो संक्रमण चलेगा उसका। आवली में प्रवेश हो जाएगा तो संक्रमण रुक जाएगा। इसलिए जघन्य काल अंतर्मूर्त लिया। और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, उत्कृष्ट काल के लिए विसंयोजना करानी ही नहीं,
28 की सत्ता
ऐसा ही रखना उसका। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषांक पहले ओग से और नरकादि गतियों से काल का स्पष्टीकरण कराए हैं, उसे ध्यान में रखकर देवगति और उसके अवान्तर भेदों में उसे घटित कर लेना चाहिए। मात्र देवगति में जहाँ जो विशेषता है उसे ध्यान में रखकर ही यह काल गठित करना चाहिए। हमने भी विशेषता देखी ना, ग्रह वेग तक तो मिथ्या दृष्टि भी है और ऊपर तो सारे सम्यक दृष्टि ही है, इसलिए ये विशेषता ध्यान में रखिए। अभी तक तो हमने काल देखा, संक्रमण का लगातार काल, अभी बीच में अंतर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, गड़बड़ नहीं करनी है अभी। ये जीव है ना अंतरम। अब एक जीव की अपेक्षा अंतर का अधिकार है, अधिकार का निर्देश करने वाला यह सूत्र सुगम है। यानी अधिकार कौन सा अभी शुरू हुआ ये बात बताया इस सूत्र के। हाँ हाँ हाँ, अनुयोग नंबर
14
आया क्या? हाँ, क्योंकि पहले 11 के बाद हमने एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व देखा, काल देखा और अंतर। अब सूत्र पढ़ेंगे। मिच्छत्त सम्मत्त सम्मा मिच्छत्तानम संकामयम अंतरम केवचिरम कालादो होति। मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का अंतर काल कितना है, यह सूत्र सुगम है। मिथ्यात्व के संक्रामक के अंतर काल का खुलासा सर्वप्रथम करते हैं। देखो, मिथ्यात्व का संक्रामक कौन है तो सम्यक दृष्टि है। अनादि से कोई संक्रामक नहीं था, जब सम्यक तो प्राप्त किया तो संक्रामक हुआ, बराबर है। फिर अभी अंतर का अर्थ क्या है, एक बार संक्रामक था फिर असंक्रामक हुआ, बाद में फिर लौट कर संक्रामक हुआ,
अंतर
तो जो सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में गया और लौट कर सम्यक दृष्टि हुआ,
एक अंतर
तो अंतर्मूर्त होगा। देखो, जिसे मोक्ष मार्ग का अनेक बार परिचय मिल चुका है।
अच्छा, ये अंतर बहुत छोटा हो जाएगा,
यानी जिसने अनेक बार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व में जाना आना किया है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी फिर उसको दृष्टि पथक कहते हैं, जिसने मार्ग देख लिया है, ऐसे शब्द आया था पहले। जिसे मोक्ष मार्ग का अनेक बार परिचय मिल चुका है ऐसा एक सम्यक दृष्टि जीव, हमने देखा ये तो कितने असंख्यात बार, पल्ले के असंख्यात वे बार सम्यक तो से मिथ्यात्व और मिथ्यात्व से सम्यक तो प्राप्त कर सकते। जब मिथ्यात्व में जाकर और परिणामवश फिर से अति स्वल्प काल द्वारा सम्यक तो गुण को प्राप्त होता है, तब मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य अंतरकाल प्राप्त होता है।
तो ये जघन्य भी वो पल्ले के असंख्यात के बाद में लास्ट
नहीं, ऐसा नहीं लेना।
नहीं,
पल्ले के असंख्यात भाग तो अर्ध पुंगल परावर्तन काल में कभी भी हो गए, हो सकता है बीच बीच में अनेक सागरों का अंतर चला गया।
अच्छा, जहाँ जो
ये बात नहीं है, लगातार बहुत बार ऊपर नीचे किया है। हाँ, हो सकते हैं
पहले से छठे छठे से
पहले
पहले से सातवें से छठे
से पहले से सातवें में जाएगा।
इसी प्रकार
ये पहले से छठे में भी जा सकेगा?
नहीं, पहले से छठे में कोई नहीं जाता, पहले से जाएगा तो सातवें में ही जाएगा, वो छठा गुण स्थान और दूसरा चढ़ने का है ही नहीं।
मई महीने का बुकिंग कर
ना, गुण स्थान की क्लास चलेगी अभी मई महीने में, शिविर है ना। देखो, यह कहते इसी प्रकार सम्यक्त्व का भी जघन्य अंतरकाल प्राप्त कर लेना चाहिए, किंतु यह सबसे जघन्य सम्यक्त्व के काल से अंतरित होता है ऐसा कथन करना चाहिए। मिथ्यात्व के बारे में क्या क्या, सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आया और जल्दी से जल्दी सम्यक्त्व प्राप्त किया। अब यहाँ कौन सा लेना, मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि हुआ और अर्लीस्ट फिर मिथ्यात्व में आया। सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अंतर काल का आगे विशेष रूप से कथन किया जाएगा, इसलिए यहाँ उसका कथन नहीं करते हैं।
तीसरे में भेज देना पड़ेगा।
हाँ, अभी पहले इनका उत्कृष्ट काल बताएंगे, फिर सम्यक मिथ्यात्व की बात करें। उक्कस्तेन वड्ढ पुद्गल परियट्टम, उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यानी मिथ्यात्व, सादी मिथ्यात्व है ना वो, मिथ्यात्व में रहने का उत्कृष्ट काल, एक बार सम्यक तो प्राप्त करने के पश्चात मिथ्यात्व में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, ये कुछ कम अर्ध पुद्गल प्राप्त, उसको उपार्ध कहा। खुलासा इस प्रकार है, उसमें भी सर्वप्रथम मिथ्यात्व के संक्रामक के उत्कृष्ट अंतरकाल का खुलासा करते हैं। मिथ्यात्व का अलग होगा और सम्यक प्रकृति का अलग होगा। कोई एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ और छह अवली काल के शेष रहने पर सासादन गुणस्थान में जाकर उसने मिथ्यात्व के संक्रमण का अंतर किया। ये उपशम काल भी पूरा नहीं बिताया, सासादन में जाते ही वो संक्रमण रुक जाता। हमने देखा था दूसरे तीसरे गुणस्थान में दर्शन मुनि किसी भी प्रकृति का संक्रमण नहीं है। फिर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक परिभ्रमण करके जब मुक्त होने के लिए उसे अंतर्मूर्त काल शेष बचा तो वह सम्यक्त गुण को प्राप्त हुआ। यानी उसके पहले वो अंतिम भव में जन्म लिया, सब हो गया, अभी मुक्त होने के लिए अंतर्मूर्त बचा,
मनुष्य भव
का तो भी सम्यक्त के साथ संयम प्राप्त करेगा, शरीर चलेगा, सब कुछ हो जाएगा।
लास्ट 10-11 अंतर्मूर्त
इस प्रकार उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त हो जाता है। यह पुद्गल परिवर्तन का कुछ कम आधा इसलिए है क्योंकि इसमें से प्रारंभ का एक मुहूर्त अंतर्मुहूर्त, क्योंकि पहले में पहले पहली बार सम्यक तो प्राप्त किया उस समय से लेकर अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल गिनना है, वो पहले वाला अंतर्मुहूर्त और अंत का एक अंतर्मुहूर्त कम होता हुआ देखा जाता है उपार्ध का। इसी प्रकार सम्यक्त्व के संक्रामक के उत्कृष्ट अंतरकाल को घटित करके कहना चाहिए। कथन तो ऐसा ही होगा कुछ कम अर्ध पुद्गल, परंतु इसमें कुछ कम के लिए क्या है, पहले औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया, फिर मिथ्यात्व में गया, उद्वेलना पूरी की, तब जाके अंतर शुरू हुआ है ना उसका। जब सम्यक दृष्टि था तब तो सम्यक्त्व का संक्रामक नहीं था, मिथ्यात्व में आया और पहले के असंख्यात भाग तो लगेगा ही, उसके पहले तो कुछ उद्वेलना हो नहीं सकती, तब उसका अंतर शुरू हुआ। फिर अंत में जाने के यानी मोक्ष जाने के पहले जो सम्यक तो प्राप्त करेगा
और
सम्यक तो प्राप्त करके फिर मिथ्या तो में आएगा, तब तक का काल लेना पड़ेगा। फिर एक अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त करेगा और मोक्ष चला जाएगा। सम्यक तो के संक्रामक का भी उत्कृष्ट अंतर कुछ यहाँ कुछ विशेष कम कुछ कम का प्रमाण पल्ले के असंख्यात्व भाग है। वहां तो दो अंतर्मूर्त से कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, यहाँ तो पल्ले के असंख्यात्व भाग कम क्योंकि पहले सम्यक तो प्राप्त किया
मिथ्यात्व
में गया अर्ध पुद्गल परावर्तन तक
नहीं, पल्ले के असंख्यात्व भाग
पल्ले के असंख्यात्व भाग काल तक
संक्रमण
संक्रमण किया फिर अंतर शुरू किया क्योंकि उपशम सम्यक्त को प्राप्त करके और मिथ्यात्व में जाकर तावन मात्र अर्थात पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल के बिना सम्यक्त की उद्वेलना नहीं हो सकती। यानी उद्वेलना पूरी करनी है ना, नहीं हो सकती है नहीं, पूरी करनी है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का उत्कृष्ट अंतकाल भी कहना चाहिए। अब सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक के जघन्य अंतरकाल विशेष का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। उत्कृष्ट तो उसमें वही घटित होगा क्योंकि सम्यक तो प्राप्त किया पहली बार, फिर मिथ्या तो में गया, पहले में पहले सम्यक तो की उद्वेलना पूरी की, फिर और पल्ले का असंख्या तो भाग काल बीत कर सम्यक मिथ्या तो पूर्ण किया, फिर मिथ्या दृष्टि रहा अर्ध पुद्गल परावर्तन, लास्ट भव में फिर सम्यक तो प्राप्त किया, तो सम्यक तो प्राप्त किया तो उसका संक्रमण शुरू हुआ,
अंतर पूरा हो गया।
हाँ, अंतर पूरा हुआ, उसके लिए दोबारा मिथ्यात्व में नहीं लाना है। सम्यक दृष्टि के भी सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण होता है।
हाँ।
सम्यक प्रकृति के लिए वापस हमने लाया था
मिथ्यात्व में, यहाँ पे नहीं लाना है।
सम्यक मिथ्यात्व तो सम्यक दृष्टि के भी उसकी चल रही है और मिथ्या दृष्टि के भी चल रही है।
सम्यक्त्व का काल थोड़ा अंतर्भूत कम हो जाएगा और इसका अंतर्भूत ज्यादा हो सकता है।
ज्यादा नहीं, इसका कम होगा।
सम्यक मिथ्यात्व का ज्यादा अंतरकाल
कम है,
नहीं ज्यादा होगा। सम्यक के लिए उसको वापस मिथ्यात्व में लाना पड़ेगा।
सम्यक तो वापस मिथ्यात्व में लाने के लिए उसका अंतर बढ़ जाएगा ना?
नहीं, कम हो जाएगा, क्योंकि वापस सभ्यत्व प्राप्त करेगा, वापस मिथ्यात्व में आएगा।
तो कम कैसे हुआ?
पहले सभ्यत्व प्राप्त करेगा, वापस मिथ्यात्व में आएगा, वापस सभ्यत्व प्राप्त करेगा, और सम्यक मिथ्यात्व के लिए सभ्यत्व प्राप्त किया और संक्रमण।
वापस उसको सम्यक्त क्यों प्राप्त कराना है?
क्योंकि
बाद वाले तो उसको अंतर्मूर्त है ना।
नहीं,
शुरू कब हुआ, अंतर समाप्त कब हुआ?
सम्यक्त्व के लिए पहले उसको सम्यक्त्व प्राप्त कराना था।
ये यहाँ कुछ पहले उसने उद्वेलना पूरी की, अर्ध पुद्गल परावर्तन, उसका काल बीत गया।
पीछे सम्यक्त्व प्राप्त करेगा।
अभी किसकी कौन सी प्रकृति की बात? सम्यक प्रकृति की बात करें तो सम्यक प्रकृति के लिए यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त किया
और वापस उसको मिथ्यात्व मिला,
तो यहाँ सम्यक्त्व का काल है।
और
फिर जब मिथ्यात्व हुआ तो सम्यक प्रकृति की उद्वेलना शुरू हुई,
संक्रमण चालू हुआ,
तो ये उसका अंतर यहाँ से यहाँ तक है,
उसका कम हो जाएगा
यहाँ तक है। अब सम्यक मिथ्यात्व का कहाँ शुरू होता है?
वो तो लास्ट अंतर्भूत में सभ्यत्व प्राप्त करेगा और श्रेणी चढ़ के मोक्ष को प्राप्त होगा, तो उसका काल ज्यादा बड़ा होगा, इसका
अंतर की बात करें। अंतर किसका कम है, सम्यक प्रकृति का के सम्यक मिथ्यात्व
का?
सभ्यत्व का कम है,
सम्यक्त्व का कम है, सम्यक मिथ्यात्व का कम है। क्यों? सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति सम्यक्त्व प्राप्त करते ही उसका संक्रमण शुरू हुआ है
और मोक्ष चला गया।
ये भी देख लीजिए ना,
इसको वापस मिथ्यात्व में लाना पड़ेगा। तो
क्यों मिथ्यात्व में लाना पड़ेगा?
सम्यक सम्यक्त्व के लिए।
हाँ, सम्यक्त्व के लिए लाया।
तो उसका उतना काल वापस अंतर
और फिर समय को प्राप्त करेगा, तब वो मोक्ष जाके प्राप्त करेगा। परंतु यहाँ पल्ले का असंख्या भाग इसका ज्यादा था।
अच्छा,
यानी समय मिथ्यात्व का अंतर वैसे भी छोटा है। देखो वो इमीडिएट वैसे लास्ट में उतना ही अंतर छोड़ना है। देखो ये समय सम्यक्त्व की बात है। समय दृष्टि था, मिथ्यात्व में आया, सम्यक्त्व का संक्रमक हुआ। एक अंतर्मूर्त मिथ्यात्व में रहा, फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया और मोक्ष चला गया। तो सम्यक्त्व प्राप्त और मोक्ष के लिए जो कुछ यहाँ का अंतर्मूर्त है ना, ये यहाँ का अंतर्मूर्त, और इसने यहाँ पर सम्यक्त्व प्राप्त किया और उसने यहीं से एक अंतर्मूर्त में मोक्ष प्राप्त किया, क्योंकि उसको फिर दोबारा मिथ्यात्व में नहीं ले जाना है, यानी उसके पश्चात वाला काल कम छोड़ना है। इसके लिए पश्चात वाला कम ज्यादा
छोड़ना है। हाँ, वही मैं बोल रहा था।
हाँ, परंतु इसका यहाँ संक्रमण कब बंद हुआ था?
पल्ले के असंख्यात व्यापार,
यानी सम्यक प्रकृति के संक्रमण बंद होने के पश्चात और पल्ले का असंख्यात भाग चला गया था, तब उसका अंतर शुरू हुआ था।
अच्छा, बरोबर है।
कल में बात, यानी इसके बाद में उसका दोनों का समान काल रखना है, मान लेते हैं उसको और बढ़ा सकते हैं ना। इसके लिए जितना बीच में काम, देखो ये दोनों का पश्चात वाले सम्यक्त्व के बाद का काल है।
सम्यक्त्व का संक्रमण यहाँ पे पहले बंद होगा और सम्यक मिथ्यात्व का
इसका बाद में बंद हुआ।
सम्यक मिथ्यात्व का बाद में बंद हुआ।
बाद में बंद हुआ, अभी उसको अधिक से अधिक काल बंद ही रखना है, तो उसको जाके लास्ट में जो अंतर्मूर्त शेष रहेगा तभी उसको सम्यक्त्व प्राप्त कराना है, और इसके लिए उसके पहले प्राप्त कराना पड़ेगा।
उसके भी अंतर्मूर्त पहले प्राप्त कराना।
पर
यहाँ पे पल्ले का असंख्य प्रभाग का डिफरेंस है,
यहाँ डिफरेंस ज्यादा हो गया। समय
वापस कल देख लेंगे।
नहीं, अभी तो पढ़ा ही नहीं हमने। हमने तो उसमें से पढ़ा ही नहीं है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो। प्रेरणा।